आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 7 श्री गुणभद्र आचार्य रचित यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है और इस पर शुल्लक मनोहर जी वर्णी जो सहजानंद जी है उनके यहाँ पर प्रवचन हम पढ़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 34 पर हम आ गए 34 और अभी हम पहला पैराग्राफ जो नया है वहाँ से शुरुआत करते हैं। आत्मवैभव की बात है ना, वहाँ से हम पढ़ेंगे। देखो आत्मवैभव का अधिकारी, यहाँ तो श्रोता की बात चल रही थी ना, कभी वो कैसे होना चाहिए वगैरह बात अपनी हमने पढ़ी थी। वहाँ तो एक बात अच्छी लगी, यहाँ तो कहते सुनते सुनते भी अपनी सन्मुखता से सुनना है, भले एकाध वहाँ तो ऐसा अभी जिसके तत्व निर्णय भी हुआ है कहो, जिसके बिल्कुल तत्व ही निर्णय नहीं हुआ तो अपने स्वसन्मुखता क्या करेगा, परंतु तत्व निर्णय होने पर भी सुनते समय जब अंदर से गहराई से अपनी रुचि हो जाती है, जागरूक हो जाती है कहो, या कोई ऐसी बात अपने को स्वसन्मुखता के लिए कार्यकारी लगती है तो स्वसन्मुखता करते करते सुनना ही कह रहे, यानी सुनते हुए उसका उपयोग, वहाँ सुनने का उपयोग हटकर अपने में चला जाए। इसको प्रायोगिक बात बताई थी उन्होंने। अब यहाँ पढ़ते हम 34 पृष्ठ पर, आत्मवैभव का अधिकारी। भैया कहाँ सुख ढूंढते हो, किस जगह सुख है, यह मोह की नींद का एक स्वप्न है। यानी जो हम सुख मान रहे हैं ये मोह की निद्रा है, जैसे नींद में सपने देखते हैं वो तो सच तो थोड़े ही होते हैं, तो ये भी जागृत अवस्था का मोह रूपी निद्रा का ये सपना ही चल रहा है। सब कुछ बिखर जाएगा, कोई भी यहाँ न रहेगा, क्योंकि अपनी अपनी आयु की मर्यादा लेकर यहाँ जन्म लिया है और यहाँ विशिष्ट काल बिताकर फिर इस शरीर से संयोग छूट जाएगा, अन्यत्र चला जाएगा, कुछ भी साथ नहीं ले जाता। ये तो हम अपना कोई घर का ही कोई सदस्य नहीं रहता है तो ख्याल वो, यानी वो तो और अधिकता से वो बात ख्याल में आती है, अरे ये क्या ले गया साथ में, जो उसका कहलाता था अभी तक उसमें से कुछ नहीं साथ में ले गया, और हम इनको इकट्ठा करने के प्रति लगे हुए हैं। तो देख सब कुछ बिखर जाएगा, कोई भी यहाँ न रहेगा, सो कोई ऐसा बुद्धिमानी का काम कर लो जिससे सदा के लिए सुख मिल जाए। हम विचार करो कौन यहाँ रह गया है, हमारे अभी चार पीढ़ी वाला तो कोई नाम निशान हमको नाम भी नहीं जानते, फिर हमारे दादा या नाना कोई थे उनकी तो याद है, वो भी चले गए, हमारे पिताजी भी नहीं रहे, ऐसे एक 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 जो जो अपनी अपनी उम्र होती है तो चले जाते, कौन यहाँ रहता है। सो कोई ऐसा बुद्धिमानी का काम कर लो जिससे सदा के लिए सुख मिल जाए। ये तो हम स्कूल में तो ऐसा सुभाषित रखते थे, हाँ तुम नहीं रहोगे तुम्हारा नाम रहना चाहिए, यानी उस नाम में भी इतनी एकत्व बुद्धि, और क्या नाम रखना रहना चाहिए कि जो कोई सोशल वर्क किया, जो कुछ परोपकार किया उसके कारण लोग आपको स्मरण करेंगे, तो ये नाम रहना चाहिए ऐसा कहते हैं। यहाँ तो कहते कि ये हमें सुख मिल जाए, यानी अपना स्वरूप पता चल जाए। बड़ा काम है यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उपासना। जो पदार्थ जैसा है उसका वैसा ही विश्वास रहे, यह तो है सम्यक दर्शन। क्योंकि हम जैसे हम नहीं है वैसा मान रहे हैं, वैसा विश्वास कर रहे हैं, तो जैसा है वैसा मानना आसान है कि जैसा नहीं है वैसा मानना आसान है? हम तो कल्पना करके उल्टा मान लेते हैं, वो ही आसान लगता है हमको। जो पदार्थ जिस स्वरूप का है उस रूप ही ज्ञान रहे, यह है सम्यक ज्ञान। अपने को अपने रूप जानना, पर को पर रूप जानना, और अपना जैसा स्वरूप है उसके अनुरूप ही आचरण रहे, यह है सम्यक चारित्र। इस रत्नत्रय, तीन है ना इसलिए त्रय कहते, रत्न है ये, इस रत्नत्रय परिणाम में ही पारमार्थिक आनंद है। एक होता है लौकिक और एक होता है अलौकिक पारमार्थिक। श्रोता को यानी एक्चुअली वास्तविक परमार्थ है ना, वो तो वास्तविकता जो है, श्रोता को वास्तविक सुख का अभिलाषी होना चाहिए। अभिलाषी यानी उसका वो इच्छुक होना चाहिए, वो चाह उसकी किसकी चाहिए, तो अपने स्वरूप का जो सुख है उसकी। हाँ, हम यहाँ 34 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, अभी अभी हमने पढ़ना शुरू किया। ये जो नया पैराग्राफ है ना, आत्म वैभव का अधिकारी, यहाँ तो ऐसा कह रहे हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 34 निकालो। तो यहाँ श्रोता की बातें अपनी हो रही थी कल से, तो यह आत्मवैभव का अधिकारी में ये बात हो रही है कि प्रत्येक जीव सुख ढूंढ रहा है, मैं वो बाहर ढूंढ रहा है, वो तो स्वयं सुखमय पदार्थ है। और ऐसा बुद्धिमानी का काम, क्योंकि यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, अपनी अपनी आयु पूरी करके निकल जाने वाला है, तो यहाँ कहते सब कुछ बिखर जाएगा, तो ऐसा कुछ काम कर लेना चाहिए कि हमें सुख की प्राप्ति हो जाए। और यह काम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो पदार्थ जैसा है वैसा विश्वास रहना, यह तो सम्यक दर्शन है। पदार्थ जिस स्वरूप का है उस रूप ही ज्ञान रहे, यह है सम्यक ज्ञान। और अपना जैसा स्वरूप है उसके अनुरूप ही आचरण रहे, यह है सम्यक चारित्र। तो इस रत्नत्रय परिणाम में ही पारमार्थिक आनंद है। तो श्रोता को वास्तविक यानी जो सचमुच जो सुख है उसका अभिलाषी होना चाहिए। मायामय सुख से विरक्ति हो, मायामय यानी वो तो दिखता है सुख जैसा परंतु है नहीं, मायामयी है। और परमार्थ सुख की प्राप्ति हो, इस भावना को लेकर जो उपदेश का श्रवण है, श्रवण यानी सुनना, उपदेश सुनते हुए उसको क्या चाहिए कि मुझे पारमार्थिक सुख चाहिए, और ये जो अन्य जो सुख जैसे लगते हैं सुख है नहीं है, उससे मैं हट जाऊं, ऐसी उसको भावना होनी चाहिए। उससे आत्मवैभव बढ़ता है, आत्मवैभव बढ़ता है। आत्मवैभव तो अनंत गुणों का स्वामी तो आत्मा है ही है, परंतु वो पर्याय में प्रकट होता है, तो उसको कहेंगे आत्मवैभव बढ़ता है। शुश्रूषा व श्रवण, सबसे पहले श्रवण की इच्छा होना ही वैभव है, क्योंकि ये बातें सुनने का उसको अंदर से जिज्ञासा होती है, यही कठिन है। क्योंकि लोगों को तो कोई जबरदस्ती सुनाने लगे तो भी तो उसको चिढ़ आती है अंदर से, है ना? कि सबसे पहले श्रवण की इच्छा होना ही वैभव है। धर्म वार्ता की शुश्रूषा भी, शुश्रूषाएं ने हमें शुश्रूषाएं ने उसकी देखभाल करना, बीमारी लोगों को वो शुश्रूषा ने, श्रुषाएं ने वो तो सुनना, शुश्रूषा अच्छी बात सुनना, उसको शुश्रूषा कहेंगे। धर्म वार्ताएं ने वो धर्म संबंधी जो चीज़ें है, जो उपदेश है, उसकी शुश्रूषा भी बड़े सुभवितव्यता से होती है। सुभवितव्यता, भवितव्यता होने योग्य जो कोई पर्याय उसको भवितव्य कहेंगे, वो भले वो खोटा हो या कुछ भी हो, यह सुभवितव्यता था। यानी जिसका भवितव्य अच्छा है उसी को ये बातें सुनने को मिलेगी। तो कहते कि श्रवण की इच्छा होना वैभव है, और धर्म वार्ता सुनने को मिलना ये भी अच्छी भवितव्य को बताने वाली बात है। सो सुनने की इच्छा होना यह भी एक वैभव है। कितने ही लोग तो धर्म की बात सुनने की भी इच्छा नहीं रखते हैं। तो सर्वप्रथम सुनने की इच्छा ही जगे, सुनने का मौका ही मिले, क्योंकि मौका मिलने भी हमसे दुर्लभ, जिसको इच्छा होती किसी को सुनने को भी नहीं मिलता है। तो इसको इच्छा भी हुई और सुनने का मौका भी मिला, ऐसा अवसर भी प्राप्त हुआ। तो यह ही एक वैभव है। शुश्रूषा के बाद फिर धर्म वार्ता का श्रवण मिलना द्वितीय वैभव है। शुश्रूषा नहीं किया, शुश्रूषा किया, शुश्रूषा फिर श्रवण क्यों लिखा? अच्छा नहीं नहीं शुश्रूषा ने इच्छा के रूप में लिया उन्होंने, वो शुश्रूषा नहीं, मैं जो बताती थी वो शुश्रूषा थी, शुश्रूषा थी, ये शुश्रूषा है, इच्छा ही उन्हें सुनने संबंधी इच्छा। यहाँ यानी सुनने की इच्छा, श्रवण मिलना यानी कोई सुनने को मिलना, अवसर मिलना। देखो शुश्रूषा यानी धर्म वार्ता की इच्छा यानी सुनने की इच्छा, वो शुश्रूषा लिया, जिज्ञासा वो सुनने की इच्छा लेना, हाँ जिज्ञासा, और फिर श्रवण मिलना यानी हाँ कोई मिले हमें सुनाने वाला, तो सुनने को अवसर मिलना, ये द्वितीय वैभव है। उन्होंने पहले वाक्य में जो लिखा ना श्रवण की इच्छा को ही उन्होंने शुश्रूषा कहा, और श्रवण यानी एक्चुअली उपदेश को सुनने का अवसर मिलना, दो बातें अलग अलग बताई, वो दूसरा वैभव। इसके बाद फिर सुने हुए तत्व का ग्रहण करना तृतीय वैभव है। देखो हमने भी देशना में क्या क्या लेते याद है, श्रवण, ग्रहण, धारणा, धारणा, फिर निर्धारण, फिर परिणमन, वैसा तो सुनने को मिलना ये बात अलग है, और वो समझना, समझना है उसको ग्रहण करना, अच्छी तरह से समझना। यहाँ कहते हैं सुने हुए तत्व का ग्रहण करना तृतीय वैभव, ग्रहण करने ने वो अच्छी तरह से समझ में आना, सुना तो सही परंतु कभी कभी सुनते हैं मगर उसका बोध नहीं होता। ये द्रव्य गुण पर्याय के लोगों को लेते क्या कठिन बातें बोलते हैं, हमको कुछ नहीं समझ में आया, उससे अच्छा है कि उपवास करो, हमको यानी वो सरल लगता है। ये तो आमतौर पर ऐसे सब जगह ऐसे क्यों मिलते हैं हमको? कितने ही लोग श्रवण करे भूल जाते हैं, क्योंकि वो याद भी रखना है, क्योंकि जो हमने सुना है समझा है याद रहेंगे वो तत्व, क्या हमने उपादान निमित्त सुना था, हमने ये बात सुनी थी, हमने भगवान का स्वरूप सुना था, याद रहे तो उस पर अपने विचार भी चलेंगे। इसलिए कहते कि कितने लोग श्रवण करे भूल जाते हैं, श्रवण करके ग्रहण न करे, जैसे कि लोग कहने लगते हैं कि सुनो और खड़े हो तो पल्ला झाड़ कर खड़े हो, क्या कहते हैं ये हमेशा कहते ना वो खंखेरी ना कहते, यानी वो वहीं की बात वहीं छोड़ देना। झटक से झटक कर पल्लू झटक कर हम खड़े हो जाते हैं, पल्ला झाड़ कर खड़े हो, जो कुछ पल्ले में आए उसे झटक दिया, खड़े हो गए, इससे क्या लाभ मिला, यानी सुना और वो बात वहीं पर छोड़ दी, कुछ अंदर घुसा ही नहीं। इनकी भाषा में ऑल प्रूफ करके जाके जाते सुनते हैं कोई अंदर नहीं घुस पाए। अब बता रहे मोहियों की शास्त्र सुनने की विधि, यानी मोही लोग कैसे वह सुनते हैं उसकी बात बता रहे। कोई एक सेठ साहब थे, उनको शास्त्र सुनने का बड़ा शौक था। एक दिन वह शास्त्र में लेट आए। पंडित जी ने पूछा सेठ जी आज आप लेट कैसे हो गए? सेठ बोले कि पंडित जी वह 9 वर्ष का जो मुन्ना है ना, सो वह भी आज शास्त्र सुनने आने की हट कर गया। फिर क्या हुआ? मैंने उसे बहुत मनाया, न माना, फिर 8 आने पैसे दिए, सिनेमा का टिकट कटा कर भेज दिया, तब यहाँ आए। अरे तो उसे भी साथ ले आते, क्या हर्ज था? पंडित जी तुम जानते नहीं हो, हम सुनने की विधि जानते हैं कि कैसे सुना जाता है। सुना और उठे तो पल्ला झाड़ कर उठे, हमें उसकी विधि मालूम है। पर वह तो लड़का है, वह यदि अच्छी तरह शास्त्र सुन ले और हृदय में धारण कर ले आपकी बात और घर छोड़कर चल दे, मेरा घर सुना हो जाए तो हम क्या करेंगे? यानी वो सुनना नहीं चाहिए, वो उसको उसमें भेजने की भी तैयारी नहीं उसके। तो जब उसे सिनेमा भेजा तब हमें छुट्टी मिली। सुनने की विधि भी कैसी अनोखी होती है मोही जनों की। ये मुझे पुना के शिविर की याद हमेशा आती है। अपने कांति भाई यहाँ के आते थे ना, वो माटुंगा वाले, हाँ, तो वहाँ बात ऐसी निकली कि ये भगवान के पास जाता है और पुत्र मांगता है, पारसनाथ के पास जाए, महावीर के पास जाए, वो तो हाँ तो कहते वो तो ब्रह्मचर्य के धारी और उनके पास जा जाके पुत्र की मांग करता है। तो उन्होंने सभा में पूछ लिया कि उनके आशीर्वाद से हमने उनके पास नमस्कार किया और हमें पुत्र मिला, तो क्या आपका क्या जाता है, क्या हर्जा है उसमें? उन्हें बोला कोई हर्जा नहीं है, उन्हें पारसनाथ के जैसा वो घर छोड़ के चला जाएगा, युवा हो जाएगा और घर छोड़ के मुनि होकर चला। नहीं नहीं फिर नहीं चाहिए हमको। वो भी मजाक नहीं कह रहे थे, फिर भी हमको ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। पुत्र तो चाहिए पर वो भगवान जैसा हो जाएगा वो मान्य नहीं है, वो हमारा लौकिक सब संसार में रूला रहेगा तो अच्छा तो चलेगा। अब नीचे का परिग्रह, उपदेश के ग्रहण धारण विज्ञान व उहापोह का वैभव। देखो यहाँ ये देशना लब्धि के सारे अंग यहाँ ले लिए। सुनने के बाद में पहला श्रवण भी आ गया उसमें, ये श्रवण के बाद वाली, क्योंकि श्रवण को ऊपर ले लिया उन्होंने। शुश्रूषा ने इच्छा होना और श्रवण करना, इसे दो बातें ऊपर ली। अब यहाँ सुनने के बाद उसका ग्रहण धारण वगैरह वगैरह बात। सुनने के बाद में शिक्षा को ग्रहण कर लेना, यह एक वैभव है। सबको एक एक वैभव तरीके उन्होंने बताया है। कुछ लोग ग्रहण भी कर लेते हैं अर्थात जान भी लेते हैं, किंतु उसे भूले नहीं, उसकी धारणा बनाए रहे, यह उससे भी उत्कृष्ट वैभव है। हमने देखा ना, श्रवण ग्रहण धारण, धारण मुख्य धारण है ना, वो तो कभी विस्मरण न हो इस तरह से उसको पक्का मन में, हम कहें मराठी में कहते हैं खुनगाड़ बांधने, जैसे बिल्कुल वो अच्छी तरह से उसको याद कर ले, स्मृति में रख ले, धारणा कर ले। इसके बाद में अवधारित तत्व के, अवधारित यानी जिसको धारण कर लिया, याद कर लिया, अच्छी तरह से हमने समझ लिया है, अभी भूलेंगे नहीं हम इसको, इसको कहेंगे अवधारित किया हुआ। अवधारित तत्व के संबंध में अपना विचार बनाए कि हेय क्या है, उपादेय क्या है। देखो पहले में पहले इच्छा पूर्वक हमने उसको सुना, रुचि पूर्वक सुना, फिर उसको समझा, फिर उसको याद में रखा अच्छी तरह से। अब जो याद है उस पर अपने विचार, उस पर हेय क्या है, उसमें छोड़ने लायक क्या है, रखने लायक क्या है। तो हमने तो सब सुना, ये सात तत्वों का स्वरूप सुना है, आश्रव बंध देखे, वो मोराग द्वेष है, दुख रूप परिणाम है। तो हमें तो पहले पहले सुखरूप लगते थे, अभी हम बारम्बार विचार करें तो ये दुखरूप है, तो ये दुखरूप जो है वो छोड़ने लायक है कि रखने लायक है, ये हम विचार कर सकते हैं ना। हेय उपादेय, हेय ने छोड़ने लायक, उपादेय ने ग्रहण करने लायक कहो, प्रकट करने लायक कहो, आश्रय करने लायक कहो। जैसे सात तत्वों में हम हेय उपादेय की चर्चा करते हैं, तो हमें जो सात तत्व क्या क्या है हमने निर्णय कर, यानी धारण धारणा में ले लिया, हम अभी उस पर विचार करेंगे कि मैं तो जीव तत्व हूँ, अविनाशी हूँ, ये बाकी सारे तो परद्रव्य है, अजीव तत्व में आ गए, सबको ही अजीव तत्व में डाल दिया मेरे अलावा सबको। फिर मोहराग द्वेष आश्रव है, वो दुखरूप भाव है, तो रखना कि छोड़ना, तो छोड़ने योग्य है, पहले योग्य है, हेय ऐसा श्रद्धा में लिया, इन्हें पुण्य परिणाम भी आश्रव में आ गए, तो वो भी रखने योग्य है कि छोड़ने योग्य है? अभी छूट जाएंगे जब कभी, जब ही छूटेंगे, वो छोड़ने योग्य है वो अभी नक्की करना है, छूटेंगे नहीं अभी, अभी क्या नक्की करना है, अभी छोड़ने लायक है इतना नक्की करना है। तो कहते हेय क्या है, उपादेय क्या है, विशेष विचार करे यही है विज्ञान, जिसको हम निर्धारण भी कह सकते हैं। ये वहाँ पोहे ने उस पर अपने विचार उल्टा सुलटा सब, हमने क्या माना था, यहाँ क्या रियलिटी है, क्या ऐसा ही है क्या, हम दोनों ही अंगों से विचार करते, वहाँ पोह कहते हैं। विज्ञान के बाद प्रश्न और उत्तर उठाकर उसका निर्णय करे, यह है तर्क वितर्क, वहाँ पोह। यानी हम उसके दोनों एंगल से विचार करें, ऐसा मानेंगे तो क्या है, ऐसा मानेंगे तो क्या है, यहाँ तो ऐसा कहा है, हमको तो ऐसा लगता है, इसमें से सत्य क्या होना चाहिए, इसको कहेंगे वहाँ पोह। जो लॉजिक हम उसमें, न्याय लॉजिक ये सब जो की बातें बताई है शास्त्र में, उसके अनुसार उसी पर हमारा विचार चले। लोग पूछते रहे तत्व विचार इन्हें क्या करना है, यही तो सब करना है, यह उससे भी उत्कृष्ट वैभव है। देखिए तर्क वितर्क हित की भावना से होना चाहिए। क्या कहा, ये कोटि कुतर्क भी करने वाले लोग मिलते हैं, यानी उल्टा तर्क, ऐसा तर्क लगाते हैं कि ये बात खोटी सिद्ध हो जाए, हमें तो जो बताया है भगवान ने वो तो सही है, हमें तर्क भी ऐसे लगाना चाहिए कि उसकी सिद्धि हो जाए, हम तो तर्क ऐसा लगाना चाहते कि वो नलीफाई कैसे हो जाए, ऐसे तर्क नहीं करना है, इसको कुतर्क कहते हैं। जैसे हमें गणित सॉल्व करना है तो जो पुस्तक में उत्तर रेडीमेड वहाँ बताए हैं, हमारे उत्तर वैसे आने चाहिए, तब तक हम विधि पूर्वक उसको सॉल्व करेंगे, तो यह उससे भी उत्कृष्ट वैभव है। सर हमेशा कहते हैं ना, वो उल्टा तर्क कैसे लगाना, डोंकी हैज फोर लेग्स, आपने सुना है ना, गधे को चार पैर है और मनुष्य को दो पैर है, इसलिए मनुष्य आधा गधा है, ये उल्टा तर्क हुआ। देखिए तर्क वितर्क हित की भावना से होना चाहिए, उसमें अपना हित जाहिर होना चाहिए। केवल किसी का मुंह बंद करने के भाव से जो तर्क वितर्क किया जाता है वह श्रोता के गुण में शामिल नहीं है। यानी सामने वाला कोई बता रहा है वक्ता, और इसने ऐसे तर्क लड़ाए कि उसको कैसे चुप बिठाए मैंने, ऐसा कहते ऐसे तर्क करने वाले तो मिलते हैं, आत्मा होता तो किसी को तो दिखाई देता कि नहीं, ऐसा बोलते ना, या तो हल्का भारी कुछ तो होता, या स्वर्ग नरक होते तो किसी की चिट्ठी आएगी आपको, ये इसको सामने वाले को चुप बैठाने के लिए कुछ भी ऐसे तर्क करेंगे। आगे देखते कुतर्क की अप्रतिष्ठा पर एक दृष्टांत, वो भी कुछ दृष्टांत दे रहे हैं। 35 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं नया पैराग्राफ। किसी गांव में एक तेली था, तेली समझते ना, वो तेल ऐसे घानी से निकालते ना, वो तेली। सो उसने एक ऐसी अकल लगाई कि कोल्हू में जो बैल चलता था, कोल्हू ने वो जो देखो बीच में वो घंटी होती है और वो राउंड यानी वो तो वो ऐसा गोल 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 घूमता है, उसको कहते कोल्हू का बैल। कोल्हू में जो बैल चलता था उस बैल के गले में घंटी बांध दी, जब तक यह चलता रहेगा तब तक घंटी बजती रहेगी और हम जानते रहेंगे कि यह चल रहा है, और जब घंटी बंद हो जाएगी तो समझेंगे कि अब बैल खड़ा हो गया है, सो आकर के फिर हाँक देंगे, इसके पीछे पीछे न चलना पड़ेगा। यानी बारंबार उसको आगे आगे धकेलने की जरूरत नहीं, वो रुक जाएगा तो पता चलेगा। वहां से निकलते हुए एक वकील साहब बोले, क्यों भाई यह क्या कर रखा है? तो कहते इस बैल के गले में घंटी कैसे बांध रखी है? तो तेली ने बताया कि यह घंटी जब तक बजती रहेगी तब तक जानेंगे कि बैल चल रहा है, और जब घंटी बजना बंद हो जाएगी तब जानेंगे कि बैल खड़ा हो गया है और आकर खेद देंगे। तो वकील साहब बोले, यदि यह बैल खड़े ही खड़े घंटी बजाता रहे तब तो तुम धोखे में पड़ जाओ, क्योंकि मान तो हिला सकता है। तो तेली बोला कि वकील साहब, जब हमारा बैल भी वकील हो जाएगा तो हम दूसरा इंतजाम कर देंगे। तो वहां पर किसी सीमा तक ही उचित है, और वह भी हित के भाव से। दुर्लभ नर जीवन की जिम्मेदारी, भैया सच तो बात यह है कि जिसने इस जगत के समस्त समागमों को असार समझ लिया है, कहीं सार नहीं, कहीं सुख नहीं, यह निश्चय कर लिया है, ऐसा पुरुष ही कल्याण में उत्सुकता रख सकता है। क्या है यह ठाट, क्या है यह देह? मायामयी स्कंद है, जल के बुलबुले की तरह है। जिसके मिट जाने में आश्चर्य नहीं, इसको जल का बुलबुला समझते हैं, मराठी में बुलबुला कहते हैं, परपोटा। यहाँ बुलबुला कहा, ये नीचे से ऐसे बुड़बुड़े आते ऊपर और फिर फूट जाते, वो तो जल से ही निकले हुए। जिसके मिट जाने में आश्चर्य नहीं किंतु बने रहने में आश्चर्य, ऐसे बनते हैं और वो तो मिटते ही है ताबड़तोब। ऐसे इस मायामय असार देह पर गर्व करना, यह कितना बड़ा व्यामोह और पागलपन है। अरे खुद ही तो खुद को खुद ही की ओर आकर गुप्त ही गुप्त खुद ही में तो कल्याण करना है, यानी स्वयं अपना ही अपने अपने में ही कल्याण करना है। ये शरीर तो जुदा का जुदा ही अपने से, उसके साथ कुछ अपना मेलजोल तो है ही नहीं है। मनुष्य भव पाया है तो एक कल्याण के लिए, इस भव में कल्याण की बड़ी जिम्मेदारी है। मनुष्य भव से सब ओर से रास्ते खुले हैं। यह नरक भी जा सके, स्थावर भी हो सके, देव भी बन सके, मोक्ष भी जा सके, यानी अन्य के तीरियंचों के लिए तो चार गति उसके लिए भी है, परंतु मोक्ष उसके लिए नहीं खुला दरवाजा, इसके लिए तो वो भी दरवाजा खुला है। भले ही आज के काल में हीन सहनन होने के कारण मुक्ति का मार्ग नहीं खुला है, लेकिन मुक्ति मनुष्य की ही तो होती है, जबकि और जीवों के रास्ते विभिन्न नियंत्रित है, वो निश्चित है अपने अपने। जो कुछ है, नारकी को तो मनुष्य तीरंच में आना पड़ेगा, देव भी मनुष्य तीरंच में आते हैं, तीरंचों को चार गतियां है, परंतु मोक्ष तो नहीं है। हाँ, मोक्ष मार्ग की शुरुआत तो हो सकती उस भव में, फिर आगे अगर समय दर्शन बना रहे तो कुछ भवों में उसके मनुष्य होकर ही मुक्ति होगी, ये तो निश्चित है। मनुष्यों को छोड़कर अन्य जीवों की गति का नियंत्रण, आगे उन्होंने देखे कुछ नियम बताए। देव मरकर देव नहीं बन सकते, नारकी नहीं बन सकते, नारकी मरकर देव और नारकी नहीं बन सकते, कुछ और बनना पड़ेगा। इसी प्रकार सभी जीवों में कुछ न कुछ नियंत्रण है, यानी कौन कहाँ मरकर जा सकता है, कहाँ से मरकर आ सकता है, इसके सारे नियमावली है। जैसे नारकी मरकर जाएगा तो संगी पंचेंद्रियों में जाएगा, असंगी में भी नहीं उत्पन्न होगा। देव तो एक इंद्रिय में भी जा सकता है या संगी पंचेंद्रिय में जा सकता है, नीचे वाले देव। पर मनुष्यों के लिए तो सब पथ खुले हुए हैं। यदि बहुत आरंभ परिग्रह मूर्छा में ही चित्त बसाया, तृष्णा और लोभ से रंगे ही रहे, तो उसका फल नरक गति में जन्म लेना बताया है। सदाचार से अपना जीवन बिताए, छल कपट रखे तो मायाचार के परिणाम में तीर्यंच होना बताया है। व्रत तप धर्मानुराग संयम साधना से जीवन बिताए तो उसके परिणाम में देवगति में जन्म होना बताया है। और थोड़ा आरंभ थोड़ा परिग्रह व धर्म में लीनता रही आए तो उसका फल मनुष्य गति में जन्म लेना बताया है। जो चाहे सो पा सकते हैं, यानी मनुष्यों के लिए मनुष्य की बात है, बाकी देव समय दृष्टि तो मनुष्य में आएंगे, नारकी समय दृष्टि मनुष्य में आएंगे, मनुष्य समय दृष्टि देव में जाएंगे। सुगम लाभ के परित्याग का अविवेक, यानी जो लाभ अतिशय सहज प्राप्त हो सकता है, बहुत आसान है, और ये उसका त्याग करता है, तो कहते ये अविवेक है, मूर्खता है। अविवेक है ना मूर्खता, जो सुगमता से प्राप्त हो ऐसा जो लाभ हो सकता है और यह जीव उसका त्याग करता है, यह उसकी मूर्खता है। देखिए भैया, यह जीव भाव बनाता है, भाव के अतिरिक्त कुछ नहीं करता है। शुभ भाव हो अशुभ भाव हो शुद्ध भाव, भाव ही तो करता है, अन्य कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो पुद्गल का परिणाम है तो उसके हाथ की बात ही नहीं है।
जो कुछ होने वाला है वह होने वाले पदार्थ के ही परिणाम से होता है।
कि जो पदार्थ जो जिस रूप से परिणमने वाला है वैसा ही होता है।
तो जो कुछ होने वाला है वो होने वाले पदार्थ के ही परिणमन से होता है।
वो भी जीव ने उसको बनाया इसलिए होता है ऐसा नहीं है। वो परिणमन भी उस द्रव्य में होगा तो होगा।
जीव तो केवल मन बनाता है। मन बनाता है ना, कुछ भाव करता है, इच्छा करता है, और भाव से ही यह दुख पाता है, भाव से ही यह आनंद पाता है। यानी वो कल्पना ही करता है और उसके कल्पना के अनुसार होता है तो सुख मानता है और नहीं होता है तो दुख मानता है। कुछ यहाँ रकम नहीं लग रही है, कुछ दूसरों की मिन्नत नहीं करना। सारी सृष्टियाँ भाव के अनुसार हो रही हैं। तो जब भाव से ही आनंद मिलता है, भाव से ही दुख मिलता है, तो दुख के योग्य यह भाव करे, आनंद के योग्य भाव न करे, तो उसे कौन विवेकी कहेगा? यानी भाव से ही दुख है, भाव से ही आनंद है। तो अगर वो दुख के ही भाव करता रहे तो उसको मूर्ख कहना पड़ेगा। जैसे किसी मनुष्य के सामने एक और खल का टुकड़ा रख दे और एक और रत्न रख दे और उससे कहे कि तो जो तू मांगे सो ही मिल जाएगा, और वह मांगे खल का टुकड़ा, तो वह आदर के योग्य नहीं है। ऐसे हम आप सबको सब कुछ भाव के द्वारा प्राप्त होता है। भावों से ही क्लेश मिलता है और भावों से ही आनंद मिलेगा। वहां भी हम आनंद के योग्य भाव न करें तो यह हमारी मूढ़ता है। उसी को अविवेक कहा, यही मूढ़ता है। तत्वार्थ श्रद्धान में विशद अवबोध पर एक दृष्टांत। विशद है स्पष्ट, अवबोध होने ने ज्ञान होना। तो तत्वार्थ श्रद्धान में जो प्रत्यक्ष या स्पष्ट ज्ञान होता है उसके लिए एक दृष्टांत देते हैं। तर्क वितर्क उत्पन्न करना एक बड़ा वैभव है, और इसके बाद अंतिम वैभव है उसका श्रेय और अनुभव बनाना। हम कहते हैं निर्धारण करने के लिए, वो ऐसे ही करने के लिए अपने ही मन में उसमें उस पर चर्चात्मक विचार चलते हैं, उसको उहापोह कहते हैं, तर्क वितर्क कहते हैं, और बाद में वो निर्णय तक पहुंचता है, उसको अनुभव होता है, उसका श्रेय मिल जाता है, अनुभव हो जाता है। आज की मानी हुई दुनिया में एक आश्चर्य बेलगोल में बाहुबली की मूर्ति को गिना है। ये श्रवण बेलगोला की जो बाहुबली की मूर्ति है उसको एक आश्चर्य में गिना है। बाहुबली की मूर्ति इतनी सुंदर और विशाल है जो करीब 1000 वर्ष पुरानी बनी है, फिर भी ऐसा लगता है कि अभी ही बनी हो। खुले मैदान में मूर्ति है, वहाँ किसी ने आज तक पक्षी की बीट नहीं देखी है और न कभी कोई पक्षी बैठा देखा है, ऐसी अतिशय की मूर्ति है। उसका हम वर्णन करें, जिसने न देखा हो वह सुने तो सुनने से बोध तो हो जाएगा, हाँ कोई इस तरह की मूर्ति है। इतने गज लंबे पैर है, इतने गज के हाथ है, गज यानी उसका माप बता रहे, फोटो बता दे तो उससे भी पहचान हो जाती है, आप सब जान लेंगे। किंतु जब वहाँ जाकर उस मूर्ति के दर्शन करें तो करने पर जो जानना होता है उस जानने में और यह सुनकर जानने में अंतर है या नहीं? अंतर है। सुनकर जानने में वह विशद ज्ञान नहीं होता और जो स्वयं दर्शन करके जाना है वह विशद ज्ञान है। ऐसे यहाँ आत्मानुभव करके जो जाना है वो सही ज्ञान है, वो विशद ज्ञान होगा। स्पष्ट विशद यानी स्पष्ट। हाँ अतिशय। बाकी अन्य मूर्तियों पर हम देखे पैसे कबूतर वगैरह जाके सिर पर बैठते कहीं पर बैठते, यहाँ ऐसे कोई बात नहीं देखी कभी हमने। तत्वानुभव में विशद तत्व बोध, ऐसी तत्व की बात है। तभी यह बात सुनी है, आत्मा की चर्चा सुनी है, अमूर्त है, ज्ञान दर्शन स्वरूप आनंदमय है, सबसे न्यारा है, सब कुछ सुनकर जान तो रहे हैं। एक तो जानना और एक ऐसा जानना कि संसार के समस्त पदार्थों को भिन्न असार समझकर उनकी उपेक्षा कर दे। अब किसी भी पर पदार्थ को यह न जानना चाहे, कहीं उपयोग न दे, और ऐसी स्थिति में स्वयं ही केवल ज्ञान स्वरूप का, वो केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान और स्वरूप एक चाहिए, केवल ज्ञान स्वरूप का अनुभव हो जाए, यानी अपने को मात्र ज्ञान मात्र अनुभव कर चले, परिणमन हो जाए, एक शुद्ध सामान्य स्थिति हो जाए, उस समय आत्मा को जाने। इन दोनों ज्ञानों में अंतर है। यानी पहले आत्मा संबंधी जाना था, अब आत्मा का ज्ञान हुआ उसको, आत्मा का ज्ञान हुआ है ने? जो आत्मिक आनंद आत्मानुभव कहते हैं, स्वयं प्रयोग करके अनुभवा जाए तो वहाँ है सम्यक दर्शन का अनुभव। और इस अनुभव के विषय में, विषय को केवल सुनने सुनाने की भी जो बात है, वह है केवल बात का ज्ञान। यो यह श्रोता तत्व श्रद्धानुरूप अपना वैभव बनाता है, इतने जिसमें गुण पाए जाए वह शिष्य है, और वही शिष्य आत्म कल्याण कर सकता है। क्या कहा यहाँ? शिष्य की, श्रोता की बात चल रही है, तो जो सुनकर भी उसका यह सुनने मात्र से उसका श्रद्धानी है, वही पात्र जीव है, वही आगे चलकर अपना अनुभव करेगा, ये बात बता रहे यहाँ पर। मैंने श्रोता या शिष्य कैसे होना चाहिए उसकी बात चल रही नहीं यहाँ पर, कैसे वो गुण चाहिए कि यह श्रोता तत्व श्रद्धानुरूप अपना वैभव बनाता है। तो ऐसे जो अन्य अन्य भी जो उसने गुण बताए पहले, ऐसे जो वो आत्मा का कल्याण कर सकता है, इन गुणों के बिना शिष्यपना नहीं बन सकता। यह श्रोता धर्म को सुनकर विचार कर ग्रहण करता है, यानी सुनता तो है, उस पर विचार भी करता है, फिर उसका ग्रहण है। यह धर्म सुखकारी है, दया गुण करी के भरा हुआ है, मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही हित है। यो इस स्वाभाविक धर्म में जिसकी रुचि होती है, जिसका इसमें ही आदर होता है, वही श्रोता वास्तविक शिष्य कहलाता है। यो कुछ श्रोता के गुण कहे हैं, इन्हें जानकर अपना परिणाम ऐसा बनाना चाहिए जिससे अपने आत्महित करने का ही भाव हो, और उस भाव का ही हम स्वरूप अनुभवे, धर्म धारण करें, ऐसे ही अपनी परिणति से अपना कल्याण संभव है। स्वरूप व बोध की पात्रता, स्वरूपा व बोध चाहिए ना, स्वरूप स्वरूप अवबोध अगर चाहिए, स्वरूपावबोध स्वरूप अवबोध। जैसे कहते कि सिंहनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है, ये उदाहरण हमने भी सुने थे ना, वो हम हमारे नेमीचंद जी रखियाल वाले बताते। इसी प्रकार वस्तु तत्व का स्वरूप एक ज्ञानी विरक्त पुरुष में ही ठहर सकता है। इस जगत में आत्महित करने वाला वस्तु स्वरूप का सम्यक अवबोध है, अवबोध है ने ज्ञान, वस्तु स्वरूप का सम्यक सही ज्ञान, सिवाय सम्यक ज्ञान के कोई अन्य उपाय ऐसा नहीं है जो इस जीव को संतोष ला सके। केवल सही ज्ञान नहीं, उसके तो आत्मा को स्पष्ट विशद जाना ना, जिसने आत्मा का अनुभव किया तो उसको कहेंगे सम्यक ज्ञान हुआ, तो उसके बिना अन्य कोई संतोष नहीं दे सकता। खूब परख लीजिए, स्वयं ही सत्व है, सत्व यानी सत्ता स्वरूप वस्तु है, सत्व है, स्वयं ही परिणमनशीलता है, और प्रत्येक पदार्थ स्वयं के परिणमन से परिणमता है, यानी वो तो कायम रहने वाली चीज स्वत्व वाली है, सत्ता स्वरूप है और कायम परिणमते रहता है और स्वयं के परिणमन से ही परिणमता है। ऐसी स्थिति में मेरे लिए सहाय मेरी विशिष्ट कर्तृत्व ही हो सकती है। ये मेरा कार्य है ना, जो मेरी पर्याय, अन्य को तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता मेरे लिए। किसी दूसरे से मिन्नत करे, किसी से आशा रखे, बड़े बड़े धुरंधर सम्राट चक्री हो गए, भारी सेना, समस्त सेवनगण, सेवकगण सामने खड़े रह गए, वहाँ भी उन्हें कोई बचा न सका, मरते न बचावे कोई। तो हमने ये देखे ना, कितने बड़े बड़े जो होगी, कोई अमीर भी होगे तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है, डॉक्टरों की तो फौज खड़ी रह सकती है, परंतु कौन बचाए उनको? सबका है ना, कितने लोग। तो हाँ, मेरे हाथ ऐसे खाली क्योंकि मैं कुछ ले नहीं जा रहा हूँ, यानी वो बड़े बड़े लोगों को भी पता, अरे हमने क्या किया, इतना सारा अभी हमारे जाने का समय आ गया, कुछ तो नहीं ले जाए, तो इतनी सारी हमारी जिंदगी बेकार गई, किसकी आशा रखी जाए और किससे संतोष मिले। यही रुकेंगे। जावानी के ज्ञान तै